आशीर्वाद का और चाकू से क्या संबंध, और चाकू उठा के दो कह रहे हैं आशीर्वाद देते और मैं चला जाता तो बड़ा अच्छा रहता। खैर अब आशीर्वाद तो लेनी है, इसलिए उन्होंने चाकू उठाया और मां की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही मां की तरफ चाकू बढ़ाया वैसे ही मां ने कहा, जाओ सुरेंद्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम विदेश में भी करुणा का, अहिंसा का संदेश देने के लिए सक्षम हो गए, जाओ मेरा आशीर्वाद। सुरेंद्र बड़े असमंजस में पड़ गए कि अभी कहा चाकू उठाओ, मैं चाकू पूरी तरह से दे भी नहीं पाया और आशीर्वाद दे दिया, उनसे रहा नहीं गया। बोले मां मुझे समझ में नहीं आया आपका ये सब व्यवहार। बोले हुआ क्या था कि जब उन्होंने चाकू जमीन पर से उठा करके मां के हाथ में देना चाहा, तब चाकू का जो फलक होता है ना वो फलक अपनी तरफ रखा और मूठ मां की तरफ कर दी थी कि पकड़ ले वो। सिर्फ इतनी सी बात पर से उन्हें आशीर्वाद मिला था कि जो व्यक्ति अपने आप को खतरे में डाल करके दूसरे के लिए सहायता करेगा वही आदमी सबसे ज्यादा सही अहिंसक होगा, सही कारुणिक होगा। उन्हें बड़ा डर लगा कि अगर फलक की तरफ से मैं धारदार धार की तरफ से अगर मैं मां को पकड़ाऊं तो हो सकता है कि उनके हाथ में लग जाए, तो उन्हें धार की तरफ अपनी धार अपनी तरफ पकड़ ली और मूठ उनकी तरफ कर दी। सिर्फ इस बात से वो अहिंसा और करुणा के प्रचार के लिए विदेश चले गए थे। ये उनका आशीर्वाद था। आप भी शायद समझ गए हों कि अगर कभी आपके मन में दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके अपने सुख की इच्छा जागृत होती हो तो समझ लेना कि अभी तुम्हारे अंदर किसी तरह के बादल आए नहीं हैं, और अगर आए भी हैं तो हिंसा और क्रोध के आए हैं। हिंसा और क्रोध के बादल नहीं होते, हिंसा और क्रोध की तो अग्नि होती है भाई, और अग्नि दूसरे को जलाती है, बादल से तृप्ति मिलती है। तुम अपने अंदर अगर किसी तरह की अग्नि जलाए रखे हो तो आज के दिन थोड़ी थोड़ी उस अग्नि पर करुणा का पानी डालने की कोशिश करना, मैत्री के बादल मैत्री की तरह बरस जाना ताकि दूसरे व्यक्ति को तुम्हारे वात्सल्य से तृप्ति मिल सके। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है।
आपको स्वयं के संदर्भ में यह स्वयं भगवान मैंने तुम्हारे फलन पत्रों करके देखी सारी जिंदगी वो मैं इनके पास में गुजारते हैं। परिभाषा ये नीति की परिभाषा है तो हमारे पास बहुत सारे अपनी शादी करके किसी की परिवार का ही रक्षा में घूमता है तो भी मानना पड़ेगा उसको भी उसको मानेगा। क्या हुआ, एक व्यक्ति जेल में चला जा रहा था और जितने पहले को एक बैठा हुआ जेल में उसके सामने एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। जैसे वो गेट में बैठा हो उससे रौनक शुरू कर दी, सामने वाला व्यक्ति बढ़ गया, जैसे बढ़ गया कि भाई गेट में बैठा हो रोने लगा। उसने कहा हो सकता है कि घर के लोग पूछ रहे हैं उस वजह से रोता होगा, और आदमी जब पीड़ा होती है तो रोते ही आदमी जब सब लोग भाई बोल रहे हैं फिर रोता होगा, उसने कुछ नहीं बोला। दूसरे को बड़ी लंबी यात्रा थी, कहते हैं किसी को भी यात्रा ये मान करके जाए। दूसरे अगर सुबह सुबह देखा कि वो आदमी फिर भी होगा आपको थोड़ा मुश्किल हुई सामने वाले को भी जब आपसे पूछा जाए, लेकिन होता ये है कि उसको जो भी संख्या से अगर ज्यादा पूछेंगे ज्यादा समय भी दिखाएंगे तो और होए, तो उसने कहा कि वो पूछना जी देखेंगे शायद शाम तक दूसरे लोग की शाम तक ठीक हो जाए, लेकिन शाम तक भी वो आदमी लोग ही कहा सामने वाला तो शाम के दोनों दिन सो गए। ठीक है, जब सुबह सुबह फिर देखा तो वो अपने रोकर चला जाता, अब तो रहा नहीं हुआ, उसने दिल्ली से जाकर पास में दूसरे को नहीं, मैं तीन दिन से लगातार बैठा हूँ आप दूसरा दिन और तुम दो दिन से बोल रहा है आपके कुछ नहीं बताओ कि हमारी बात कितना दूसरा करना तो रहते पास में क्या करोगे पूछ करके बोलने के लिए बताओ वहाँ पे क्या बात। तो दरअसल बात ये है कि तीन दिन हो गए आज और मैं गलत गाड़ी में बैठा हूँ, एक दिन हो गए आज गलत गाड़ी में बैठा हूँ इसलिए होगा। अरे भले आदमी गाड़ी में बैठे थे दूर दूर से जहाँ मालूम था तो अभी तक उतर जाते आपको हंसी आ गई उस आदमी पर, और मैं सोचता हूँ कि कभी अपने बाबत तुमने सोचा कि कितने दिन से एक ही गाड़ी में बैठे और रो रहे हो कि क्या करें उतरते क्यों हो इसीलिए उतर के तो देखो, अगर गलत गाड़ी है एक बार मालूम पड़े कि गाड़ी गलत में बैठे हुए हैं तो उतर करके देखो गाड़ी तो बदल के सकते ना। अभी भी दिवस तेज है, अभी भी आज वहां भी जयंती इसकी आई है एक सूरज की तरह, हम अपने दरवाजे खोलें अपनी खिड़कियां खोलें घर के बाहर आए और सभी में प्रदान मिल सकेगा। मैं एक समय और आपको सुना दू, एक नाविक था बहुत बड़ी बात थी, खाने पीने को बहुत टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, एक दिन ऐसे ही हुआ कि शाम को खाना मिले एक क्या बेचारा पानी वाले पी करके बहुत दुखी था, अब खाली पेट चली तो आती ज्यादातर सरबत बेटा रहा कि कैसे सुबह वो ना उतर जाऊं शायद कुछ रोटी रोटी के लिए मिल जाए गरीब आती सुबह चार बजे होंगे, अभी सूरज नहीं मिल रहा था प्रकाश नहीं हुआ था, तो काफी सब नदी के किनारे जाकर के बैठते हैं और वहीं पर टाइम अपना काफी मिनट तक सुबह हो जाएगी। नदी के किनारे पहुंचा तो अचानक कैसे नदी के किनारे पहुंचा उसके ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसने उठा रहे थे और उसका भी देखा था उसका भी जो पत्थर जैसे कबूल रखे तो उसने कहा हो सकता है कि शाम को एक दिन में आए हों और जैसे लोग इस तरह के पत्थर इकट्ठे किए होंगे और घूम करके माने बुलाया होगा कि चल बैठे वापस घर करना तो वापस चल जाएंगे, सब छोड़ छाड़ करके उसके बगल बोल होता है हमारी बात होती तो शायद पत्थर का पैसे की बात करके आ जाते और छोड़े हम नहीं हंसे ना। तो बच्चे उसने पत्थर वहीं पर छोड़ के चले गए, फिर वो पत्थर उसके हाथ से लगे, उसने कब कोई बात नहीं अगर वजह से टाइम को कैसे भी काटना है तो पत्थर उठा कर जो उसने लगी का देखा आवाज नहीं गिराज की उस पर ऐसे बड़ी सुंदर आवाज है जिसका हाथ लगे कि चलो ऐसे ही कट जाएगा हमारी रात कट जाएगी बाकी दिन हो जाएगा, धीरे धीरे उसके पत्थर के पत्थर वो देखता आज पत्थर उसके हाथ में था और सुबह हो गया, आज ही पत्थर हाथ में था और सुबह हो गई। सुबह के प्रकाश में जब उसने अपने हाथ का पत्थर देखा तो पत्थर अपनी मुट्ठी में दबा करके वो बहुत दिन तक रोता रहा, बहुत चिल्लाया कोई आसपास नहीं था बना बहुत चिल्लाया कि मैंने सब कुछ खोज रहा था, हुआ ये था जो उसके हाथ में पत्थर था वो किया था वो किया था और अब तक कहेंगे कि जितने भी पत्थर थे वो गिरेगी और पत्थर बांध करके वो उपयोग कर एक एक करके सारे पत्थर देखता गया था और जो प्रकाश का अभाव था ज्ञान नहीं था तो गलती हो क्योंकि अंधकार था, लेकिन सौभाग्य उसका ये भी था कि अब कम से कम एक पत्थर एक किया उसके हाथ में अभी भी बोल सारे पत्थर समझ करके फेंक दिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर पता थोड़ा भी आपको लगा हो कि कुछ मिला, कोई पत्थर जो हमने आज तक पत्थर मान लिया था उसको हीरा मानकर उसकी कीमत करना शुरू कर, आगे से कीमत करना शुरू करें। एक कदम आपके हाथ में बहुत सौभाग्य डाली है आप, कि कम से कम एक कदम तो आपके हाथ में, एक पत्थर को बचा, कम से कम एक हीरा तो आपके हाथ में बचा और बर्दाश्त हो गया। ये मान करके अगर आप आगे चलेंगे तब तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता है, और भगवान महावीर जी कहते हैं कि हम अपनी उन सारी कमजोरियों पर थोड़ा सा ध्यान देकर के अपने जीवन को रूपांतरित करने, अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करें, सबको कुछ ध्यान आए तो हमारी शक्ति से बना दो। सत्तर साल और सात साल और छत्तीस साल पहले गुजर चुके हैं, महावीर की करुणा और महावीर के अभिभावक एक बात और मैं आपसे कर दूँ। महावीर अभिभावक कहते हैं कि वो पत्थर को भी है और एक बार ऐसी घटना भी मिली कि वो माँ के साथ में कृष्णा के साथ में कृष्णा के बेटे वर्तमान तो वर्तमान चले जा रहे थे और मानेगा कि चलो बेटे अपन घूम करके आते हैं शाम के टाइम, बेटे को साथ में लेकर के वे माँ चले जा रही थी, वही से आया और तो जीते थे मान कर चली गई, लेकिन माता हाथ सुना दिया उन्हें खराब हो गया वही और थोड़ी दूर आकर जाकर जो बुलाए उसको कि बेटे आ जाओ अंदर वर्तमान, वर्तमान ने बाबा को चौथे आई देखा तो वर्तमान रो रहे बोले क्यों बैठे साहब हमको भी तो हाथों से बहुत खराब की है क्योंकि इस लंबी लंबी बॉबल टूट पर कह सकती चलती होना तो उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई नए चूहे पर कह सकता, तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी सारी पेट सारा गलत खुल गया जो लंबी दूर पर कह सकती है, मुझे लगता कि मेरी पीठ खुल गई और हमारे बाहर आकर के देखा तो वाकई उसकी पीठ पर पैर से निशान थी जैसे अपने भी कोई उस पर निकल गया। इतनी अधिक संवेदना इतनी अधिक करुणा कहते हैं कि उनके अंदर बड़ा व्यास चरित्र रहा होगा भगवान महावीर का, अगर व्यक्ति करुणा और व्यक्ति अहिंसा हम अपने जीवन में ला सके, हम तो किसी पर पैर रखते थे लोगों को जीवन जी माना फिर व्यक्ति का फर्क पड़ता है पाप पाप का वितरक हो जाएगा, लेकिन प्रीति की तकलीफ आपने अपनी तकलीफ व्यक्ति अगर जितने जानेंगे तो उसने से प्रीति पर पैर रखना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए, आप उससे प्रीति पर पैर नहीं रख सकते, आप तर्क करना भूल जाएंगे कि आपने क्यों नहीं खाना चाहिए और डबल रोटी क्यों नहीं खाना चाहिए और ये पालना क्यों नहीं करना चाहिए, जितनी चीजें हिंसा की होती थी उन सबको तो हमने पहले मना कर दिया था, लेकिन फिर अब आप लोग आपकी गुस्सा की लालच थी तो आपने फिर तर्क देना शुरू किया कि हिंसा में हिंसा थोड़ी होती है, क्योंकि आपके अंदर सबके प्रति था कि आप किसी तरह से तर्क में इनको हरा करके महाराज तो कहते हैं ऐसे थोड़ा तर्क वर्क हुए तो अपने आप नीले हो जाएंगे, और मेरे नीले होने से ठीक है आप खाई होगा मुझे तो कुछ होने वाला नहीं, मैं तो मान ही रहा हूं, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता तो ऐसा करिएगा। अहिंसा के बाबत एक बात और कहते ये तो हो गई अपनी अंतरंग की और एक अंतरंग में भी परत पर जीवा नाम ये भी अहिंसा का पॉजिटिव है, नेगेटिव तो अहिंसा है कि हिंसा नहीं करना, पॉजिटिव है तो फिर क्या करना, तो परस्पर को द्रोह जीवाना परस्पर एक दूसरे का उपकार करना, दो मित्र जो है वो एक अपने गांव से शहर गए वो शहर में इसके रहते थे दोनों बहुत अच्छे चित्र बना लेते थे और उन्होंने सबसे शहर में जाकर के अपनी चित्रकारी थोड़ी अच्छी डेवलप करेंगे सीख लेंगे एक दो साल में डिप्लोमा हो जाएंगे चित्रकारी में आर्ट में, जब वो वहां पर पहुंचे तो समझ करिए आगे की खाएंगे पिएंगे क्या, इसलिए रिश्ता दो साल तक रहेंगे खाएंगे पिएंगे क्या, उनमें से एक ने ऐसा निर्णय लिया तो कि एक व्यक्ति कमाएगा एक व्यक्ति सीखेगा, फिर बाद में जब वो एक व्यक्ति सीख जाएगा तो दूसरा व्यक्ति अपने आप सवाल हो जाएगा तो दूसरा सीखेगा, तो पहले व्यक्ति ने एक मित्र ने कमाना शुरू कर दिया और जिस वजह से सामने पत्थर लगे हैं उसको घोड़ में कभी भी बनाने का काम उसने शुरू कर दिया, शाम को कमा करके लाता वो इधर उसे गाड़ी ठीक करके आता और ऐसे दिन गुजरते गए, दो काल में वो जो चित्र बनाना सीख रहा था वो चित्र बनाना सीख गया, ये पत्थर घोड़ता रहा कमाता रहा दोनों खाते रहे, इसी की गुजरती है जिस दिन उसकी परीक्षा हो गई वो पास हो गया वापिस लौटा तो उसने अपने मित्र को गले लगा लिया, बोले मित्र अब तो मैं कमाना भी पड़ेगा, अब एक चित्रकार हो गया हूं मैं कमाऊंगा अब तो चित्र बनाना सीखना, और उसकी उंगलियां उसे अपने हाथ से लेकर के उसका हाथ अपना और वह जोर से दबाया। ये मन जब बहुत अनुभूति के भाई होते हैं तब शांत आते हैं किसी का भी कवर कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो जब उसने चित्रकार ने अपने दूसरे मित्र के व्यवस्था पहुंचाना हाथ दबाया तो देखा कि उसकी सारी उंगलियां बहुत कभी हो गई और चित्रकारी के लिए तो बुलाए उंगलियों की जरूरत हो। वो चित्रकार मित्र रोने लगा कि तुमने आखिर ये क्या किया, पत्थर दौड़ते दौड़ते दो सामने तुमने अपनी उंगलियां बर्बाद कर दी, अब तुम कैसे चित्रकार बन सकोगे। मैं कहा कि मैंने व्यर्थ नहीं किया जीवन, मेरा जीवन दोस्ती से सार्थक हो गया, दूसरे से लोग चित्रकार बन सकते हो गए, मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। मैं नहीं बन पाया चित्रकार कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो अपने जीवन में चित्रकार बन गए। अगर मेरे दो साल की जिंदगी तुम्हारे किसी काम आ सकी तो मैं चित्रकार बना सकी, तो मेरे जीवन के दो सालों की सार्थकता में कोई बात नहीं, मैं चित्रकार बन सकता है। ऐसा तो नहीं आपकी इस अहिंसा के बाबत दूसरे के उपकार की भावना लेकर के कभी सोचे तो सारे जीवन में अहिंसा उतर सकेगी। अहिंसा के लिए मैं दोनों बातें आपके हैं। अब आपको मैंने कहा था जो अच्छा लगे उसकी आस्था लगे आपका बाकी मेरा माना भी होगा।
उसके प्रति उसकी कोई मूर्छा नहीं होगी। एक साधु बाहर में पेड़ के नीचे
सोया करता था रोड ऊपर से राजा देखता था, उसके महल के बाजू में सोता था, राजा देखता था कि ये साधु जो है यहाँ सोता रहता बेचारा ठंड में पड़ा रहता। एक आध दिन उसने मन में आया कि इसको अपने अंदर घर में बुला लें तो अच्छा रहेगा, वैसे महान महान टीके में बहुत सारे पड़े हैं, इतने बड़े महल में इसके लिए थोड़ी सी जगह तो मिल ही जाएगी। अपने एक सेवक को भेजा राजा ने, बोले कि जाओ साधु को टीकर बुला लाओ, कहना कि राजा बुला। साधु के पास पहुंचा, बोले साधु जी हमारे राजा साहब ने बुला है। बोले जरूरत नहीं है, राजा को अगर जरूरत हो तो वो आ जाए, मैं नहीं जाना। राजा पूरा आने लेने, बोले कि साधु जी बात ये है कि आप इतनी ठंड में यहाँ पड़े रहते हैं और हम सोचते हैं कि क्यों ना आप चल करके अंदर और हमारे बहन करें। साधु ने एक बार तो सोचा, फिर उसको भी जरा आनंद आया, बोले देखते हैं कैसा राजा है, कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। देखते हैं पहुंच के अंदर और राजा ने सब कमरे दिखाए, बोले ये रहा देखो मेरे सोने का कमरा और ये है, बहुत अच्छे उस पर गद्दे और तकिए और सब कुछ लगे हुए थे। राजा ने कहा क्यों साधु जी यहीं पर रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। साधु ने कहा ठीक है, ऐसी भाई आप जैसा कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं। उसी कमरे में जिस कमरे में राजा रुकते थे उसी में साधु जाकर के रुके। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, महीने गुजर गए, साधु जाने का नाम नहीं थे। राजा बड़े परेशान, बोले कि यह अजीत साधु आया है तो जाने का नाम ही नहीं देता, और इतने बड़े उसमें अब तो साधु वाधु नहीं रहा, ये तो हो गया साधु नहीं रहा, अब तो हमारे जैसे ही हो गया, हमारे घर में रहने लगा, और सब जैसा हम खाते वैसे ही ये खाता है, जैसे हम रहते वैसे ही ये रहता है, क्या फर्क नहीं उसमें और हमें। तो एक दिन राजा ने पूछ दिया, बोले साधु जी हम एक प्रश्न पूछें। साधु ने कहा पूछा, बोले कि आपकी जैसा हम खाते हैं वही आप खाते हैं, जिस पर हम सोते उसी पे आप सोते हैं, सारी चीजें आपकी और हमारी एक जैसी हैं, हम और आपने फर्क है। बोले राजन आज नहीं कल बताऊंगा फर्क, आपको वक्त गुजर गया कल बताऊंगा। बोले ठीक है कल बता दूंगा क्या फर्क है, बाकी फर्क वे नहीं गया हम और आप, फर्क तो ये कहीं आप भले ही कुछ और बताएंगे लेकिन फर्क नहीं रहे, आपकी मकान पर रहते हैं हमकी सब बातें वही हैं। तो दूसरे दिन आहार वगैरह हुआ, साधु ने कहा बोले राजन जरा दूर टहल करके आएंगे, जरा मेरा कमंडल उठाओ। कमंडल उठाया राजा ने, साधु आगे आगे राजा पीछे पीछे, जरा दूर पहुंचा राजा ने कहा कि तमाजिए कमंडल में वापस जाओ। बोले कि थोड़ा और गया, थोड़ी दूर और गया, नदी आ गई। साधु ने कहा कि राजन इस नदी के पास तक चलो। राजा बोला हम नहीं जा सकता, अब तो समारोह अपना कमंडल और मैं चला वापिस। बोले राजन फर्क जानना चाह रहे थे ना, यही फर्क है, मैं तुम्हारे महल में रहते हुए भी महल में नहीं रहा, तुम यहां बन में खड़े हुए भी अभी महल में ही रह रहे हो, मैं अब वापिस नहीं लौटूंगा महल में, मैं तो आ गया यहां तक, अब नदी पार करके जंगल में चला जाऊंगा, मुझे महल में रहते हुए भी जंगल था, जंगल में रहते हुए तो जंगल है ही, तुम्हें तो महल में रहते हुए भी महल था और महल से अनंगल में आए तो भी महल ही है, बस तुमने और हम में ज्यादा फर्क नहीं है, इतना फर्क तो जरूर है, तुम्हारी मूर्छा अभी महल में है, मेरी मूर्छा महल में रहते हुए भी महल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम महल के अंदर भी बैठे हैं, मंदिर के अंदर भी बैठे हैं, क्योंकि हम उससे अटैच नहीं है, इसलिए आप हमें सामरिक हैं तो नहीं कह सकते, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि अगर रुकते नहीं है तो चार महीने क्यों रुकते हैं। दूसरा उदाहरण सुना दू तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। क्या हुआ, बुद्ध के जमाने की बात है, वो भगवान महावीर स्वामी भी उसी वक्त में हुए जब बुद्ध का वक्त था। तो एक रोज की बात की, एक आदमी रहता था अंगुली माल नाम का, वो अच्छा आदमी नहीं था, वो अंगुलियां निकाल लेता था दूसरे की, जो उस रास्ते से गुजरता था, वो जहां रहता था उस रास्ते से जो भी निकलता था उसकी अंगुली ले लेता था, पांचों दसों अंगुलियां निकाल लेता था और उनकी माला पहनता था, इसलिए अंगुली माल उसका नाम था, बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का आदमी हो। बुद्ध भी उस रास्ते से निकलने लगे तो लोगों ने कहा कि महाराज उस तरफ से मत जाइएगा, वहां अंगुली माल पहनता है और अच्छा आदमी है, आपको नहीं जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि अच्छे बुरे का तो सवाल ही नहीं, आदमी अगर है तो मुझे निकलने में कोई परेशानी नहीं है, से मुझे मतलब नहीं है, अगर आदमी है तो मुझे निकालने में परेशानी नहीं है, और कुछ उसी रास्ते से निकले। और कहते हैं कि जैसे ही दूर से अंकली मान ने बुजुर्ग को आते हुए देखा तो बड़े गुस्से में आ गया कि ये कौन सा आदमी है जो मरने के लिए तैयार है, जबकि सबको मालूम है यहाँ रहता हूँ। कुछ उसके रास्ते से आगे निकले, थोड़ी दूर आगे निकले थे, बहुत गुस्सा है, ये तो मेरे सामने से बिंदास चला जा। अंकली मान ने बुद्ध के पीछे दौड़ना शुरू किया, और जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा, लेकिन गुरु को पकड़ नहीं पाया, चिल्लाया दूर से वही श्रवण है। बुद्ध ने भी डरते डरते आवाज दी, अंकली मान मैं तो ठहरा हुआ हूं, दौड़ तो सुन रहे हो, मैं तो ठहरे ही हूं, आपको दौड़ तो सुन रहे हो। अंकली मान बड़े शक्ति में आगे बोलेगी, ये भी कोई बात नहीं, मैं इधर दौड़ रहा हूं, तुम भी चल रहा हो, कह रहे हो कि मैं तो रोका ही हुआ हूं और तुम दौड़ रहे हो। सही पहुंच गया, बुद्ध भी खड़े हो गए। फिर अंकली मान बोला, बोले शरण और तो सब ठीक है, मैं तो तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आई, उनसे मैंने कहा था कि खैर हो, तुम रोके नहीं, करते करते दौड़ रहे थे, बोले करते रोके ही हुआ तुम दौड़ रहे। तो बुद्ध ने फिर सवाल दिया, बोले अंकली मान मैं तो चल चुका, मैं तो चल ही रहा हूं, रोके तो तुम हो, अब बहुत मुश्किल में आ गया, अभी जैसे थे कि तुम दौड़ रहे हो और मैं रोका हुआ, अब कहने लगे बोले मैं तो चल चुका, मैं ही चल रहा हूं, तुम तो रोके हुए हो। बड़ी उलझन खड़ी कर दी बुद्ध ने, बोले हमारे समझ में नहीं आया, बोले बताता हूं जो मैंने पहले कहा कि मैं तो रोका ही हुआ हूं, चलो तो तुम रहे हो तो चलो, मेरी बात मैं रुक गई है, तुम अभी बाधाओं के पीछे दौड़ रहे हो, बताओ कौन ठहरा है कौन चल रहा है। अगली बार तुम अपनी बाधाओं के पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए मैंने कहा कि अभी तुम्हारी दौड़ जारी है, और मेरी बात मैं रुक गई है इसलिए मैं तो रुक गई हूं। और तो दूसरी बार तुम मैंने कहा कि मैं तो चल ही रहा हूं, मैं तो चल चुका हूं, खेले तो तुम हो, सुनो अंकली मान मोक्ष मार्ग तो मैं तो हमेशा चल ही रहा हूं, खेले तो तुम हो, अभी चलने शुरू नहीं किया तुमने। तो शायद बात आपके समझ में आ गई होगी कि चलने और ठहरने में बड़ा फर्क है। हम यहां पर भले ही ठहरे हैं लेकिन मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, आप वासनाओं में ठहरे हैं, हम अपनी आत्मा में ठहरे हैं, और चार महीने ये अपनी आत्मा में ठहरने के हैं, किसी घर में ठहरने के नहीं है, किसी घर में ठहरने का निषेध है, अपनी आत्मा में ठहरने का तो कोई किसी का निषेध नहीं है। दोनों प्रश्न आपके हो गए। अब मैं श्रद्धा की बात पर आ जाऊं सीधी सीधी कि हमें आपने आमंत्रित किया, और शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमने क्यों बुलाया है महाराज। बहुत सारे लोगों ने तो सोचे ही नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने भी सोचा होगा, अगर सोचा भी होगा तो भी सोचा होगा कि चलो अच्छा रहेगा, महाराज मिलेंगे, बहुत ज्यादा पाप हमसे हो जाता है, कभी कभार महाराज के पास बैठ करके थोड़ा पुण्य रूप करेंगे, बैठे तो बराबर हो जाएगा। कुछ लोगों ने जमीन सोच करके बुलाया होगा, या कुछ लोगों ने इसलिए बुलाया होगा कि चलो अच्छा है, महाराज के साथ साथ हमारी भी फोटो खींचेगी। शायद कुछ लोगों ने यह सोचकर ये बुलाया होगा कि चलो महाराज के आने से अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलेंगी, और शायद कुछ लोगों ने इसलिए बुलाया होगा कि चलो अच्छा है, दिन अच्छी तरह से कट जाएंगे, और जब जरूर का मौका आएगा तो जोर जोर से झंडा हाथ में लेकर चिल्लाएंगे। लेकिन बहुत थोड़े से लोग होंगे, अगर आपने इन सब वजहों से मुझे बुलाया हो तो आपका बुलाना ना बुलाना बराबर है। मैं इसके बारे में भी एक उदाहरण दे दूं, जब प्रजापति गौतमी बुद्ध की मां बुद्ध के पास दीक्षा लेने आई थी, तब बुद्ध ने अवस्था में उनको दीक्षा दी थी। बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि गौतमी अगर तुम इसलिए आई हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं और तुम्हारा कल्याण कर दूंगा तो वापस लौट जाओ, गौतमी अभी बस से वापस लौट जाओ, और गौतमी अगर तुम इसलिए आई हो कि तुम्हारे बेटे के संग में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो गौतमी अभी बस है वापस लौट जाओ। बस एक ही बात है गौतमी, अगर तुम ये मान के आई हो कि मेरा कल्याण मैं स्वयं करूंगी तो तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूं। यही बात मुझे आज आपसे करनी है कि मैं हम दोनों यहां पर आए हैं और ये बात समझना कि हम आपका कल्याण करने आए हैं, हम तो अपना आत्मकल्याण करने यहां पर आए हैं। आप अपना आत्मकल्याण अपने आप करेंगे अगर आप तैयार होंगे अपना आत्मकल्याण करने। अगर आप द्वार खोलने के लिए तैयार होंगे तो सूरज की रोशनी प्रवेश करने से इंकार नहीं करेगी। आप अगर खाली होंगे तो नदी का पानी, कुएं का पानी, जहां जिस तरफ का भी पानी होगा जो नीचे की तरफ बहता है, अगर आप नीचे बैठ करके अपने आप को खाली करके और कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा। अन्यथा हमारा यहाँ ना आना और आना दोनों बराबर रहेंगे, आपका बुलाना ना बुलाना दोनों बराबर रहेंगे। ये बातें बहुत पहले हम अपने ये समझ लें, इसलिए मैंने कही। और दूसरी बात ये, एक और उदाहरण, बहुत सारे ढेर सारे उदाहरण मुझे याद आ जाते हैं आप लोगों को देख करें कि श्री कृष्ण के की बात है। नेमिनाथ जिस समय हुए उनके जतिरे भाई श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण को लोग भगवान मानते थे और हमेशा जब भी कोई विपत्ति उनके आती थी तो श्री कृष्ण को बुलाते थे, याद करते थे कि हे श्री कृष्ण आओ मेरी सहायता करो। तो क्या हुए, एक दिन श्री कृष्ण खाना खाने बैठे हुए थे, रुक्मणी पंखा मिला रही थी और उसने बीच में एक ग्रास हाथ में लिया और मुंह तक नहीं किया था और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ग्रास रख लिया और उठ करके दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगे। रुक्मणी थोड़ा आते हुआ कि खाना खाते वक्त बीच में रोक के कहां चले जा रहे हैं, क्या उसने कहा बेटे अभी आ जाएंगे वापस। तो श्री कृष्ण दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजे से वापस लौट करके फिर आगे फिर खाना खाने लगे। रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीच खाने में से उठ के दरवाजे तक गए और दरवाजे से वापस लौट के फिर आगे। बोले आखिर मुझे समझ में नहीं आया आपका ये सब की बीच खाने में से उठ करके आप गए और दरवाजे तक गए, दरवाजे से वापस आ गए फिर खाने लगे। बोले कि तुम नहीं जानते वो क्या था कि बाहर लड़ाई हुई, बाहर में लड़ाई हुई और वहां पर एक मेरे भक्त को लोग पत्थर मार रहे, तो मेरे भक्त ने मुझे आवाज दी एक श्री कृष्ण आओ मुझे बचाओ। तो मैं अपना ग्रास छोड़ करके बचाने का सब क्या दरवाजे तक पहुंचा था तब तक कि मुझे मालूम पड़ा कि उस भक्त ने अपने हाथ में अपने पत्थर उठा लिया है और वो लड़ने के लिए भैया अब मेरी जरूरत उसकी मैं वापस लौटा, अब उसके हाथ में पत्थर है उनको मेरी जरूरत नहीं है, वो वापिस लौट आया। ऐसे ही अगर जिन्हें हमारी जरूरत होगी तो हम उनके लिए उनके पास हैं, जिन्हें हमारी जरूरत नहीं है उनके लिए हम उनके घर आकर भी उनसे बहुत दूर हैं। ये बहुत मुद्दे की बात आप अपने दिमाग में रख लेना। इसके बाद हमारी 4 महीने की यात्रा शुरू होगी, यात्राएं सारी रुक जाएंगी बाहर की, ये 4 महीने बाहर की यात्रा के लिए हैं, हमारी यात्राएं अंदर की तरफ होंगी। आप सब भी अगर हमारे साथ अंदर की तरफ यात्रा करने की तरफ आएंगे तो हम आपका सहर्ष स्वागत करेंगे। आपने हमारा स्वागत किया हम भी आपका स्वागत करेंगे कि आइए। और एक बात बहुत बड़ी स्पष्ट मैं आपसे कह रही कि मैं या हम दोनों जन यहां पर किसी का गृहस्थ जीवन बिगाड़ने नहीं आए, किसी का कुछ लेने नहीं आए, ना किसी को कुछ देने आए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखें, हम यहां से ना आपके बेटे बेटी को ले जाएंगे ना हम यहां 4 महीने के बाद रुकेंगे। बिल्कुल पक्की बात है, जो हमारे साथ आना चाहेंगे उनके लिए भी हम नहीं ले जाएंगे। आप ऐसे किसी धोखे मत रहे, ये बहुत ही अलग तरीके का धर्म है। यहां बना किसी को खींच करके लिया नहीं जाता, दिया ले जाया नहीं जाता। यहां तो जो अपनी देवता से आता है तो मेरे जाने के बाद भी जिसको आना है वो आ जाए। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि हम आपके बेटे बेटी देने आए हो तो ऐसे किसी धोखे में मत रहना। यहाँ पर इस मार्ग पर चलना बहुत सरल नहीं, ये खड़ की हार है और पूरी परीक्षा के बाद जो उसमें नहीं उतरता है वो ये मार्ग पे चल सकता है। भाई जीवन में बहुत थोड़े से लोग हैं जिनके मस्तिष्क में ये बात आ गई है कि मुझे अपना कल्याण करना है, और मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे लोगों को जिनके दिमाग में थोड़ी सी बात होती है कि मैं अपना कल्याण करूँ, तुम अगर मदद नहीं कर सकते तो हाथ खींचने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पीछे तुम किसी आदमी को अगर उठा नहीं सकते तो तुम्हें धक्के देने का कोई अधिकार नहीं है। एक बहुत बड़ा सहनसार और वो बुद्ध के पास पहुंचा, बोले कि मुझसे बड़ा कोई सहनसार नहीं, अगर जाऊं तो एक मिनट के अंदर जितने चाहे लोगों के ढेर लगा दूं। बुद्ध ने कहा कि बहुत मेहरबान हो, बहुत मेहरबान, मैंने माना, लेकिन सुनो ऐसा करो वो सामने पेड़ लगाना उसका पत्ती जोड़ लाओ। बोले इतना सोचने की बात है, मैं तो लोगों को बोल देता हूँ, तुम तो पत्ती की बात करते हो। गया झटके के साथ उसने दो चार पत्तियां तोड़ी, बुद्ध के पास लाकर के रखनी, बोले ये रही पत्तियां, तुमने पत्ती तोड़ने के लिए कहा था? बोले हाँ पत्ती तोड़ने के लिए। और एक मेहरबानी करोगे? बोले हाँ, और बताओ कौन सी मेहरबानी करना? बोले जाओ ये पत्तियां उसी टहनी में लगा के आ जाओ। बोले ये नहीं होता, तो तुम्हारी मेहरबानी मुझे समझ में आ गई। तुम दूसरे को सिर्फ तोड़ना जानते हो, जोड़ना नहीं जानते। कोई अगर फल से जुड़ना चाहे तो तुम उसको जुड़ जाने देना, तुम तो अपनी सारी जिंदगी धर्म से नहीं जुड़ पाए, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो धर्म से जुड़ना चाहती हैं, तो उनको तुम बाइज्जत जोड़ लेने की कोशिश करना। लेकिन हम तो यहाँ न तोड़ने आए हैं न जोड़ने आए हैं, न हम दूसरे से जुड़ने आए हैं, हम तो एकाकी विचरते हैं, धर्म का रक्षण है इसलिए एकाकी विचरेंगे। जो धर्म से जुड़ जाता है, जो परमात्मा से जुड़ जाता है, वो अपनी वजह से जुड़ता है, किसी के कहने से नहीं जुड़ता। ये श्री कृष्ण का उद्घोष क्यों है यहाँ पर कि सर्वधर्मान परिचर्य अहमेकम शरणम व्रज, सब लोग सब धर्मों की शरण छोड़ दें मेरी एक शरण में आ जाए, ये श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन भगवान महावीर एक कदम आगे थे, उन्होंने ये कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने ये बोला है कि तुम आओ, मतलब तुमने अपनी स्वयं कहा अंते शरणम पौगर जामी जिते शरणम पौगर जामी ताऊ शरणम पौगर जामी एक ही बंधन पर हम शरणम पौगर जामी। मैं अनंतों की शरण को स्वीकार करता, मैं सिद्धों की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं आचार्यों की उपासनाओं की साधुओं की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं सत्य जो देवी के द्वारा प्रेरित हम उसकी धर्म उसकी शरण को स्वीकार करता हूँ। तुम अपनी वजह से स्वीकार कर रहे हो, तुम खुद कह रहे कि मैं शरण को स्वीकार करता हूँ, शरण देने वाला नहीं कह रहा कि तुम मेरी शरण में आओ, भगवान कभी नहीं बुलाता कि तुम मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। जो कल्याण करने आते हैं, जो अपनी वजह से अपना कल्याण करने कर जाते हैं, तो हम यहाँ पर रहेंगे और उस बीच जो भी हमारे पास आएंगे हम आपसे उन्हें छीनेंगे नहीं। हमने तो यहाँ तक सोच रखा है अपनी जिंदगी में कि किसी के माता पिता से पूछे बिना उसके बेटे को हम नहीं दे रहे, ये आप हमारे ऊपर विश्वास रखें। हम किसी की गृहस्थी अपनी हमारी गृहस्थी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे की गृहस्थी बिगाड़ रहे, हमारे लिए सब बराबर है, सबकी गृहस्थी हमारी गृहस्थी है। ये मात्र आप चलना उदाह जय का नाम बंदा ये गुरु बताओ।